16 सूरजमुखी अंधेरे के 1972 कृष्णा सोबती पृष्ठ संख्या 172। आधुनिक हिंदी लेखिकाओं में कृष्णा सोबती उर्दू की लेखिका इस्मत चुगताई की भांति बोल्ड लेखिका के रूप में बहुचर्चित होकर सदैव विवादों के घेरे में रही हैं। सामान्य तौर पर स्त्री लेखिकाओं के लिए वर्जित समझे जाने वाले जातीय विषयों को लेकर कृष्णा जी का लेखन अधिक मुखरित रहा है। यारों के यार में जहां उन्होंने मुंहफट नायिका की बोल्ड इमेज को प्रस्तुत किया था और मित्रों मरजानी में जहां उन्होंने एक विपुल वासनावती स्त्री का आलेखन किया था, वहां सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में लेखिका ने विलोमी छोर की नारी रत्ती ब्रैकेट में रत्तिका को प्रस्तुत किया है। अर्थात मित्रों जहां जरूरत से ज्यादा सेक्सी है वहां रत्ती बेहद सेक्स अपील रखते हुए भी भयानक रूप से ठंडी स्त्री है। यौन विज्ञान की दृष्टि से उसे स्त्री का ठंडापन विमेन्स फ्रिजिडिटी कहते हैं। पृष्ठ संख्या 173। फ्रिजिडिटी का सामान्य अर्थ ठंडापन होगा। यह शब्द ऐसी स्त्रियों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसमें यौन भावनाओं का अभाव मिलता है। यौन विज्ञान में अब इसका प्रयोग धड़ल्ले से चल रहा है और बहुत से पति शशपथ कहने को तैयार हैं कि उनकी पत्नियां ठंडेपन की शिकार हैं और सेक्स संबंधी किसी भी बात में उनमें जरा सी भी रस नहीं है। पैराग्राफ चिन्ह। वस्तुतः स्त्रियों के ठंडेपन के कई कारण हैं। वैसे थोड़ा बहुत ठंडापन तो अधिकांश स्त्रियों में पाया जाता है, परंतु यहाँ जिस ठंडेपन की बात है उसमें स्त्री संभोग की पूर्णतया नकारती है। ऐसी स्थिति में उसे एक जातीय बीमारी भी कह सकते हैं। रूढ़िचुस्त धार्मिक संस्कार स्त्री में यौन जीवन के प्रति अनभिरुचि पैदा करते हैं। इस कार्य को गंदा और अश्लील समझती हैं। अतः जब उनका विवाह हो जाता है तब वह अनिच्छा से इस कार्य में प्रवृत्त होती हैं। वे इतना समझती हैं कि जनन क्रिया के लिए यह आवश्यक है, जबकि आधुनिक यौन विज्ञान ने अब स्थापित कर दिया है कि केवल पशुओं में ही यौन क्रिया का उद्देश्य केवल प्रजनन होता है। मनुष्यों में प्रजनन के अतिरिक्त आनंद की प्राप्ति भी उसका एक उद्देश्य है। परंतु दूसरे प्रकार की फ्रिजिडिटी, जिसे एक बीमारी या कमी कह सकते हैं, वह दो प्रकार की होती है। पहला नैसर्गिक, दूसरा प्रासंगिक। नैसर्गिक ठंडेपन में स्त्री के जनन अवयवों में शारीरिक क्षति के कारण कुछ अंगों का अभाव होता है। ऐसी स्त्रियों में रजोदर्शन भी नहीं होता और इसे ठीक नहीं किया जा सकता। परंतु प्रासंगिक प्रकार का ठंडापन किसी भयानक दहशत या हादसे के कारण होता है। प्रस्तुत उपन्यास की नायिका रत्तिका के साथ ऐसा ही हुआ है। शैशवावस्था में एक व्यक्ति उस पर वहसियाना हरकत करता है। कई बार सेक्सुअली परवर्टेड लोग छोटी बच्चियों पर बलात्कार करने में पैसाचिक आनंद का अनुभव करते हैं। रतिका पर बलात्कार करने वाला व्यक्ति भी यौन दृष्टितया विकृत था। उस बलात्कार का इतना भारी सदमा रतिका पर ऐसा बैठ जाता है कि बाद में युवावस्था में वह क्रीड़ा के लिए एक प्रकार से निकम्मी सी हो जाती है। रतिका बहुत सुंदर है, शिक्षित और मेधावी है। सुंदरता और प्रतिभा से वह लोगों को आकर्षित करती है। जैसे परवाने समा की तरफ खिंचते हुए चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार नवयुवक रत्तिका की तरफ बुरी तरह से आकर्षित होते हैं। परंतु उनके युवा प्रेम की संतृप्ति नहीं होती, क्योंकि जैसे ही वे रत्तिका से शारीरिक प्रेम चाहते हैं, रत्तिका का जातीय ठंडापन उन्हें वह करने से रोकता है और वे लोग उसे डाइन, विच, चुड़ैल और न जाने क्या क्या उपाधियाँ देते हैं। पैराग्राफ चीन। ठीक इसी बिंदु पर यह उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास बुधभा की बेटी से तुलनीय हो जाता है, क्योंकि उस उपन्यास की रधिया अपने भोलेपन के कारण गांव के एक मंचले युवक द्वारा बलात्कृत होती है। रधिया भी रत्तिका की भांति बहुत सुंदर है। वह पुरुष जाति के प्रति प्रतिशोध लेने के लिए लोगों को अपने रूपाकर्षण में फांसती है और उनको मझधार में ले जाकर डुबो देती है। परंतु रधिया और रत्तिका में अंतर है। पृष्ठ संख्या 174 कि जहां रधिया यह सब जानबूझकर करती है, वहां रत्तिका की यह मानसिक और शारीरिक मजबूरी है। वह पुरुष प्रेम को प्राप्त तो करना चाहती है, परंतु ऐन प्राप्ति के समय वह भयंकर रूप से पीड़ित पड़ जाती है। उसका उत्साह बुझ जाता है और वह बहुत दुखी हो जाती है। पैराग्राफ चेंज। इस संदर्भ में डॉक्टर पारुकांत देसाई ने रतिका का विश्लेषण करते हुए लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, महाभारत की कुंती और माद्री की समस्या यह थी कि पांडु की शारीरिक स्थिति के कारण वे उनसे जातीय संपर्क नहीं कर पाती थी। यहाँ रतिका की समस्या यह है कि वह पुरुष के प्रति आकृष्ट होती है और उसे सर्वांगीण रूप से प्राप्त भी करना चाहती है, परंतु ऐन मौके पर वह उत्फुल्लित कलिका सी रतिका यकायक छुई मुई की तरह सिकुड़ और बुझ जाती है। रतिका या रत्ती एक अतीव सुंदरी है, उसमें एक गजब का आकर्षण है। हर पुरुष पतंगी की तरह उसकी तरफ खिंच आता है, परंतु अंतिम क्षणों में उसके ठंडेपन का अनुभव होने पर उसका मोह भंग हो जाता है और वे उसके विषय में सोचते हैं कि क्या वह औरत भी है या नहीं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ आधुनिक लेखिकाओं के नागरीय परिवेश के उपन्यास डॉक्टर पारुकांत देसाई पृष्ठ संख्या 18। पैराग्राफ चेंज। रतिका के जीवन में 16 पुरुष आते हैं, अतः वह रतिका का यह ठंडापन उसका वह अभिशाप दिवाकर नामक एक विवाहित पुरुष के द्वारा टूटता है। दिवाकर यह कर पाता है क्योंकि दूसरे पुरुष की तरह वासना से प्रेरित होकर वह नहीं आता। उसे रतिका के प्रति सहानुभूति है, सच्चा प्रेम है और संवेदना है। अतः अपने सहज स्वाभाविक प्रेम के कारण धीरे धीरे वह रतिका के भीतर की स्त्री को जगाता है और इस तरह अंततो गत्वा उसके ठंडेपन के चक्रव्यूह को भेदने में समर्थ हो जाता है। यह तो एक सामान्य यौन विज्ञान का सत्य है कि यदि किसी स्त्री में थोड़ा बहुत ठंडापन हो या उसमें किसी समय कामेक्षा न हो तो संवनन के द्वारा उसमें कामेक्षा को जगाया जा सकता है। बिना संवनन में किया गया यांत्रिक संभोग बलात्कार का ही दूसरा नाम है। अभिप्राय यह है कि जहाँ एक सामान्य प्रकार के ठंडेपन को दूर करने के लिए भी प्रेम संवेदना इत्यादि की आवश्यकता रहती है, तो रक्तिका का मामला भी मनोवैज्ञानिक अतएव जटिल प्रकार का है। उसके लिए अधिक धैर्य, विवेक्षा, संवेदना आदि की आवश्यकता रहती है और दिवाकर वही करता है। दूसरे पुरुष जहाँ रतिका के प्रति आकर्षित होकर सीधे उसके शरीर की मांग तक पहुँच जाते हैं, वहाँ दिवाकर अनेक दिनों तक उसके साथ मैत्री संबंध रखते हुए उसके भीतर की स्त्री को आहूत करता है। जिस प्रकार राजेंद्र यादव कृत अनदेखे अनजान पुल की निन्नी लघुता ग्रंथि को दर्शन नामक एक युवक द्वारा दूर करती है, ठीक उसी प्रकार दिवाकर भी यहाँ रतिका की मनोवैज्ञानिक रुग्णता को खत्म कर देता है। परंतु तब रतिका के स्त्री संस्कार बीच में आते हैं और वह दिवाकर से कहती है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, मैं जुड़े हुए को नहीं तोड़ूंगी, मैं विभाजन नहीं करूंगी, मेरी देह अब तुम्हारी प्रार्थना है दिवाकर। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ सूरजमुखी अंधेरे के कृष्णा सोबती पृष्ठ संख्या 125। इस प्रकार रतिका तृप्त होकर भी अतृप्त रहती है। उपन्यास के अंत में लेखिका द्वारा रतिका के चरित्र का एक नया आयाम हमारे सामने प्रस्तुत होता है। रतिका के स्थान पर कोई दूसरी स्वार्थी स्वकेंद्रित स्त्री होती तो वह दिवाकर को आसानी से नहीं छोड़ती, परंतु यहाँ रतिका दिवाकर के गृहस्थ जीवन का भी विचार करती है, उसकी पत्नी के बारे में भी सोचती है और अपना घर बनाने के लिए दूसरे का घर उजाड़ना नहीं चाहती। इसे हम रतिका के चरित्र की महानता या उदारता कह सकते हैं। 17. रेत की मछली 1976 श्रीमती कांता भारती पृष्ठ संख्या 175। श्रीमती कांता भारती का उपन्यास रेत की मछली आधुनिक साहित्यिक तबके की काफी चर्चित उपन्यास है। इसमें लेखिका ने ऐसे छद्मवेशी पुरुष का चित्रण किया है जिसमें उसकी नायिका कुंतल ठगी जाती है। साहित्य मनुष्य को अधिक सभ्य और बेहतर बनाने का एक साधन या माध्यम है। फलतः साहित्यकार में भावुकता, सहृदयता, कोमलता, संवेदनशीलता, मानवता, चेतना की उदारता आदि सामान्य मनुष्य की तुलना में बड़े चढ़े रूप में होने चाहिए। इस संदर्भ में शैलेश मटियाने के विचार ध्यातव्य होंगे। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, जो साहित्यकार यह कहे कि उसके द्वारा कहे शब्दों को उसके आचरण में तलाशा जाए, उसे यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसे शब्द के प्रयोग का नैतिक अधिकार नहीं। शब्द सिर्फ लिपि में नहीं, अर्थ में नहीं, अपने नाद और सत्व में भी होता है, और इसीलिए सिर्फ वही साकार तथा सार्थक होता है जहाँ उसे अपने को धारण करने वाला आचरण मिलता है, क्योंकि सत्व की पहली मांग आचरण की होती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ लेखक और संवेदना शैलेश मटियानी पृष्ठ संख्या 47। परंतु इधर के बहुत से साहित्यकारों और लेखकों में यह विचार बतौर फैशन चल पड़ा है कि लेखक का उसके साहित्य से कोई लेना देना नहीं। टीएस इलियट के निरपेक्षतावाद का भी वे गलत ढंग से अंगीकृत कर रहे हैं। वस्तुतः लेखक न्याय, विवेक, सत्य आदि का पक्षधर होना चाहिए। वह व्याध धर्मी नहीं बल्कि धर्मी होना चाहिए कि एक क्रोच पक्षिणी की वेदना भी उसे उद्वेलित कर जाए। परंतु इधर साहित्य, कला आदि के नाम पर बहुत सी उच्छृंखलताएं पनप रही हैं। प्रस्तुत उपन्यास का नायक शोभन ऐसे छद्म कलाकारों का प्रतिनिधि है, परंतु उसका छद्म व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक और लुभावना है। उपन्यास की नायिका कुंतल नायक के हिप्नोटिक व्यक्तित्व की शिकार होती है। कुंतल सुंदर, शिक्षित, सुशील और मासूम है। उसे साहित्य और साहित्यकारों से एक विशेष प्रकार का लगाव है, अतः वह शोभन की लक्ष्यदार बातों में आ जाती है। कुंतल को शोभन कोई गुनाहों का देवता सा प्रतीत होता है। वह शोभन से विवाह करना चाहती है। शोभन यही चाहता है क्योंकि कुंतल के कारण शोभन की साहित्य मंडली पर प्रभाव पड़ सकता है। उस पर कुंतल के पिता ने कुंतल को बहुत समझाया था कि शोभन कवि और लेखक है, उसका कोई भरोसा नहीं। आज उसकी संवेदना तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ भी हो सकती है। परंतु कुंतल पूरी तरह से शोभन के प्रभाव में आ चुकी थी। वह कहती है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, अगर वह दिन आ गया तो आपके घर लौटकर नहीं आऊंगी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ रेत की मछली कांता भारती पृष्ठ संख्या 149। 1954 की बसंत पंचमी के दिन मिसेस आनंद ने कुंतल का परिचय प्रणय और अंततः परिणय में बदल गया, परंतु 5-6 वर्षों में ही वह दिन आ गया जिसकी चेतावनी कुंतल के पिता ने दी थी। 1960 के जून महीने में कुंतल घर और शोभन दोनों को छोड़कर तथा अपनी बेटी तोरण को लेकर जिंदगी के रेगिस्तान में भटकने के लिए निकल पड़ती है। 2 साल के बाद वह तोरण को भी शोभन के हवाले कर देती है। तोरू को सौंपकर कुंतल आधुनिक नारी के साहस का ही परिचय देती है, क्योंकि पृष्ठ संख्या 176, भारतीय नारी की यही एक कमजोर और दुखती नस है। प्रायः इस बिंदु पर आकर भारतीय नारी कमजोर पड़ जाती है। स्त्री की इसी कमजोरी का फायदा पुरुष वर्ग उठाता है। पैराग्राफ चेंज। विवाह के बाद कुछ वर्ष तो अच्छी तरह से व्यतीत हो जाते हैं। शोभन कुंतल को बहुत ही चाहता है, या कम से कम ऐसा एहसास दिलाता है। कुंतल एक बार सामाजिक प्रसंग में बाहर गई थी तो उसने 2 दिन में ही 2 पत्र लिख डाले थे। कुंतल के कारण वह पड़ोसी रमण नामक व्यक्ति पर मुकदमा ठोक देता है। रमण का जीवन भारतीय नारी की एक दूसरी ही त्रासदी को रूपायित करता है। रमण अपनी विधवा भाभी के साथ रहता था और उसे रात दिन मारता पीटता था। शोभन कुंतल की सुख शांति के लिए अपना मकान बेचकर दूसरे स्थान पर किराए का मकान भी ले लेता है। शोभन और कुंतल के प्रगाढ़ प्रेम और अच्छे दिनों का प्रतीक है तोरण, परंतु उसके बाद ही शायद कुंतल और शोभन के लिए बासी हो जाती है। वस्तुतः इस स्थिति के कारण ही शोभन का असली स्वरूप कुंतल के सामने आता है। शोभन अत्यंत कामुक और सेक्स मोनियाक व्यक्ति है, अतः जब कुंतल को गर्भ रहता है तब आखिरी महीनों में भी अपनी सेक्स संतृप्ति के लिए उसकी दूसरी स्त्री की तलाश जारी हो जाती है, और मीनल के रूप में उसको ऐसी स्त्री मिल भी जाती है। पैराग्राफ चेंज। कुंतल की अवदशा के पीछे मीनल का भी हाथ है। कुंतल के लिए तो स्थिति इन्वर्टेड कॉमा ओपन हवन करते हुए हाथ जले वाली है। मीनल कुंतल की सहेली थी, कलकत्ते में अपने जीजा के साथ रहते हुए शोध कार्य कर रही थी। जीजा ने उसकी मजबूरी तथा यौन सुलभ भावनाओं का लाभ उठाते हुए उससे शारीरिक संबंध स्थापित किए। इन संबंधों से मीनल आत्मिक दृष्टि से प्रसन्न नहीं थी। उसकी आत्मा उसे सदैव कचोटती थी। अतः आत्मकुंठित होकर वह आत्महत्या का फैसला करती है और आत्महत्या करने ही जा रही थी कि शोभन और कुंतल उसे बचा लेते हैं। मीनल शोभन को अपना भाई मानती है और उसे राखी भी बांधती है, परंतु कुछ ही समय में वह भाई बहन का प्रेम प्रेमी प्रियतमा में बदल जाता है। पहले जो तड़प जो पागलपन कुंतल के लिए था, अब वैसी स्थिति मीनल के लिए शोभन के मन में पैदा होती है। इस प्रकार कुंतल मीनल को सहारा देती है और वही मीनल उसका घर बर्बाद कर देती है। पर उसमें मीनल का भी क्या दोष? शोभन की जो प्रकृति है उसके रहते तो कभी ना कभी यह होना ही था। कुंतल से पहले भी बेनोजी, संतोला, मिसेस आनंद आदि कई स्त्रियों से शोभन के संबंध रह चुके थे। पैराग्राफ चेंज। वस्तुतः शोभन एक सेक्स मैनियाक व्यक्ति ही नहीं, प्रत्युत काम कुंठाग्रस्त विकृत मस्तिष्क वाला व्यक्ति भी है। प्रसव वेदना के कारण जब कुंतल बेहोश हो जाती है, तब उसकी बेहोशी में भी वह उसे निर्वस्त्र करके देखता है। प्रसूति गृह में कुंतल जब प्रसव वेदना से छटपटा रही थी, तब शोभन महोदय जो लेखक और कवि होने का दावा करते हैं, दूसरे कमरे में मीनल के साथ शारीरिक सहवास का आनंद उठाते हैं। वह मीनल को भी कई बार निर्वस्त्र होने के लिए कहता है। एक बार तो पत्नी की गोद में मीनल का सिर रखते हुए उसके साथ सहवास करता है। अपनी इस पर स्त्री गामिता को उचित ठहराने के लिए वह कुंतल से कहता है, इन्वर्टेड कमापन, कुंतल, तुम मुझे महान लेखक बनाना चाहती हो ना, उसके लिए पत्नी के अतिरिक्त प्रेरणा भी तो लेनी होती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ रेत की मछली कांता भारती पृष्ठ संख्या 206। शोभन के इस तर्क में जैनेन्द्र के प्रेयसी वाद का अत्यंत घटिया सतही और भौंडा अनुकरण मिलता है। पृष्ठ संख्या 177। जैनेन्द्र तो प्रेयसी को आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं और प्रेयसी का वह प्रेम भी उन्हें आत्मिक रूप में ही स्वीकार्य है। प्रेयसी को भी यदि शरीर के धरातल पर ही पाना हो तो पत्नी और प्रेयसी में क्या अंतर रह जाता है? जैनेन्द्र जी तो प्रेयसी को पुरुष की प्रेरक शक्ति मानते हैं। उनके शब्दों में, इन्वर्टेड कॉमा पेन, आदमी सिर्फ आदमी नहीं है, दिव्यत्व भी है और पशुत्व भी। प्रेम जो है वह आदमी की दिव्यता से जुड़ा हुआ संबंध होता है और प्रेयसी दिव्यता का प्रतिरूप होती है। पत्नी सामाजिकता है, प्रेयसी दिव्यता है। ईश्वरत्व के दर्शन प्रेयसी में ही प्राप्त होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ लेख द्वंद ही रचनात्मकता को आधार देता है। जैनेन्द्र, पत्रिका धर्मयुग, सितंबर 1974। पैराग्राफ चेंज। कई बार ऐसा होता है कि पुरानी रूढ़िवादिता के तहत समाज या माता पिता के दुराग्रह या हठाग्रह के कारण किसी संवेदनशील कलाकार के मध्य अशिक्षित, फूहड़, बदसूरत और संकीर्ण मनोवृत्ति वाली कर्कशा स्त्री मर दी जाती है। तब वह व्यक्ति प्रबुद्धता और संवेदना की खोज में किसी सहृदय स्त्री से मैत्री संबंध बांधता है, परंतु ऐसा संबंध भी संस्कारिता एवं दिव्यता से परिपूर्ण होना चाहिए, घर उबाऊ और फूहड़ प्रकार का नहीं। इस संदर्भ में डॉक्टर पारुकांत देसाई के निम्नलिखित विचार ध्यातव्य रहेंगे। इन्वर्टेड कॉमा पेन, साहित्यकार लेखक या कवि रसिक हो सकता है और कामुकता में अंतर करना ही पड़ेगा। भ्रमर वृत्ति और सुअर वृत्ति में भी फर्क करना पड़ेगा। रसिक लेडी इंटर नहीं होता, उसे पाकर स्त्री धन्य होती है, धृकृत नहीं होती। वह संवेदनाओं का सौदागर भी नहीं होता। वस्तुतः शोभन साहित्यिक लेखक या कवि भी नहीं है, वह इन सब का छद्म रूप है। वह अपने मित्रों, लेखकों तथा व्यवसायिकों का दोहन करता है। वर्मा जी को मोहरा बनाकर वह एक बड़े सम्मेलन का आयोजन करवाता है, सब कार्य उनसे करवाता है और स्वयं उद्घाटक का महत्वपूर्ण पद हथिया लेता है। अपने मित्रों और साथियों को सीढ़ी बनाकर वह सफलता के शिखरों को छू लेता है। कोई भी कार्य वह निस्वार्थ भाव से नहीं करता। कुंतल को सभाओं में तभी तक साथ रखता है जब तक उसकी उपस्थिति उसका स्वार्थ साधन बनती रहती है। डॉक्टर भुवन के विचारों को अपने प्रारंभिक वक्तव्य में संप्रेषित कर दिया। दूसरे के लेखों और कविताओं की उठांतरी उसकी एक मूल वृत्ति है, अतः वह केवल साहित्यिक जोर नहीं बल्कि काव्य दस्यु भी है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ आधुनिक लेखिकाओं के नगरीय परिवेश के उपन्यास डॉक्टर पारुकांत देसाई पृष्ठ संख्या 95। एक स्थान पर वह मीनल से कहता है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, मीनल मैं तुमसे सच कहता हूँ, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ। अगर यूरोप में होता तो जापाल सात्र को भी लोग इतना बड़ा नहीं मानते। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ रेत की मछली पृष्ठ संख्या 149। वस्तुतः आगे चलकर वह मीनल के साथ भी ऐसा नहीं करेगा जो उसने कुंतल के साथ किया, उसकी कोई गारंटी नहीं। परंतु प्रस्तुत उपन्यास में केवल कुंतल अपना अधिकार मांगने उसके पास जाती है, तब वह लात घूसों और चप्पलों से बात करता है। जानवर की तरह मार मार कर वह कुंतल से जबरदस्ती गलत सलत बातें लिखवा कर संबंध विच्छेद की याचिका अदालत में दाखिल कर देता है। कुंतल को भरण पोषण की रकम न देनी पड़े उसके लिए अपनी याचिका में वह उसे चरित्रहीन घोषित करता है और तलाक मिल जाने पर मीनल से विवाह कर लेता है। पृष्ठ संख्या 178। उसके पश्चात कुंतल को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। पिता से जो बड़बड़ कर बातें की थी उसके कारण वह उनके पास नहीं जाना चाहती। कुछ समय युवा महिला संघ के भवन में रहती है, परंतु अंततः उसे वह भी छोड़ना पड़ता है क्योंकि वह तो न अविवाहिता है और न विधवा। वह एक परित्यक्तता और मजलूस औरत थी और हमारे समाज में विधवा के लिए तो फिर भी कुछ करुणा मिल सकती है, पर परित्यक्तता स्त्री को लोग बिना वास्तविकता जाने बूझे ही कुल्टा की उपाधि दे डालते हैं। अतः ऐसी स्त्रियों को कोई नौकरी या आश्रय भी नहीं देता। ऐसी स्त्रियों को पुरुषों की कामुक दृष्टियां कौवे और चीलों की तरह मंडराती रहती हैं। एक बार समाचार पत्र में विज्ञापन पढ़कर दिल्ली की एक स्कूल में वह नौकरी के लिए जाती है, तब वहाँ की तंग गली में स्कूल के नाम पर मिलती है अंधेरी कोठरियाँ और आचार्य के नाम पर एक लंपट व्यक्ति। कोई दूसरी स्त्री होती तो परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देती, परंतु कुंतल संघर्ष का रास्ता अख्तियार करती है। पतझड़ की आवाजें की भांति कुंतल की चारित्रिक दृढ़ता भी सराहनीय है। वह अनेक संतरासपूर्ण स्थितियों से गुजरती है, परंतु उसमें कहीं चारित्रिक अस्थिरता नहीं आ पाती, नहीं वह अपने शरीर और रूप को भुनाती है। वह नौकरी की तलाश जारी रखती है। महिला संघ से निकाल दिए जाने पर वह अपनी सहेली कुमुद के घर चली जाती है। घर क्या बरसाती सा एक छोटा सा कमरा। समूचा उपन्यास अधोमुखी कथा प्रवाह में लिखा गया है। कुमुद के दफ्तर जाने के पश्चात एकांत में कुंतल अपने विगत जीवन की जुगाली करती है और उसकी उस स्मृति यात्रा के रूप में उपन्यास का सर्जन होता चला गया है।